नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
I am confident that this comprehensive agreement
हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।